एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं दर्शन, फिलॉसफी की दुनिया की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी हट के किताब में।
हाँ, गिल्बर्ट रायल की द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड।
बिल्कुल,
ये किताब, हाँ, 1949 में आई थी। सुनने में शायद थोड़ी पुरानी लगे,
पर इसके विचार वो आज भी उतने ही ताजा और जरूरी हैं,
है ना। ये किताब मन यानी माइंड और शरीर के रिश्ते पर, मतलब सदियों पुरानी जो सोच चली आ रही थी, उसे सीधी चुनौती देती है।
हाँ, वो सोच जिसे डेकार्ट जैसे बड़े दार्शनिकों ने पक्का किया था कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है और उसके अंदर एक अदृश्य अभौतिक मन या आत्मा है जो उसे चलाती है।
बिल्कुल। और रायल ने मजाक में इसे कहा था, मशीन में बैठा भूत, घोस्ट इन द मशीन, घोस्ट इन द मशीन। और ये सिर्फ फिलॉसफी की बात नहीं रह जाती, है ना। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं, दूसरों को कैसे समझते हैं,
यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बन रही है, इन सब पर रायल के विचारों की गहरी छाप है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस थोड़ी कह सकते हैं मुश्किल लगने वाली किताब के बड़े आइडियाज को आसान और दिलचस्प तरीके से समझें।
तो चलिए पहले मिलते हैं इस भूत को भगाने वाले विचारक से, गिल्बर्ट रायल।
हाँ, गिल्बर्ट रायल 1900 से 1976 ब्रिटेन के एक जाने माने दार्शनिक थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। वो 20वीं सदी के उन विचारकों में से थे जिन्होंने दर्शन करने का तरीका ही बदल दिया एक तरह से।
हाँ, वो जिस धारा से जुड़े थे उसे कहते हैं सामान्य भाषा दर्शन, ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलॉसफी। सुनने में भारी लगता है पर मतलब सीधा सा है।
हाँ, मतलब ये कि उनका मानना था कि बड़ी बड़ी दार्शनिक पहेलियां अक्सर इसलिए खड़ी हो जाती हैं क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की भाषा के शब्दों को ठीक से नहीं समझते या उनका गलत इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, तो ये मन शरीर वाली जो सदियों पुरानी प्रॉब्लम है।
बिल्कुल। तो रायल ने मन शरीर की समस्या को किसी साइंटिफिक मिस्ट्री की तरह नहीं देखा जिसे लैब में सुलझाना हो। उन्होंने कहा, अरे भाई, ये तो भाषा की गड़बड़ी है। हमें बस ये देखना है कि जब हम कहते हैं मुझे पता है, मैं चाहता हूं, उसे गुस्सा आ रहा है, तो इन शब्दों का असल मतलब क्या होता है, हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं रोजमर्रा में।
उस जमाने में कुछ और सोच भी चल रही थी, जैसे व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म।
हाँ, जो कहता था कि मन जैसी कोई अंदरूनी चीज है ही नहीं, सिर्फ बाहरी व्यवहार मायने रखता है। रायल को यह बात कुछ हद तक सही लगी कि हमें किसी रहस्यमय अंदरूनी दुनिया की कल्पना नहीं करनी चाहिए।
लेकिन उन्हें लगा कि ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है।
हाँ, व्यवहारवाद चीजों को ज्यादा ही सरल बना रहा था। तो रायल का लक्ष्य था एक ज्यादा बारीक, मतलब सटल समझ पेश करना। वो दिखाना चाहते थे कि हम अपने सोचने, महसूस करने, इरादे बनाने की बातें बिना किसी भूतिया मन का सहारा लिए कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, प्रॉब्लम हमारे शब्दों के इस्तेमाल में है, हमारे कॉन्सेप्ट्स में है।
तो आते हैं किताब पर, द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड। इसका मुख्य मकसद क्या था? रायल किस चीज पर निशाना साध रहे थे?
सीधा निशाना था उस सोच पर जिसे वो आधिकारिक सिद्धांत कहते हैं, ऑफिशियल डॉक्ट्रिन, यानी डेकार्ट वाला आइडिया कि मन और शरीर दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं।
एक भौतिक मशीन शरीर
और एक अभौतिक ड्राइवर मन। रायल कहते हैं ये सोच न सिर्फ गलत है बल्कि बेतुकी है, निरर्थक है।
और यहीं पर आता है उनका सबसे मशहूर आइडिया, श्रेणीगत भूल, कैटेगरी मिस्टेक। क्या मतलब है इसका? सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है।
हाँ, पर कॉन्सेप्ट मजेदार है। रायल कहते हैं कि हमने मन को गलत कैटेगरी में डाल दिया है। हमने मान लिया कि जैसे शरीर एक वस्तु है, एक जगह है, वैसे ही मन भी एक तरह की वस्तु या जगह है, बस वो दिखाई नहीं देती। ये वैसी ही गलती है जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट मैच देखने गए, आपने बॉलर देखा, बैट्समैन देखा, फील्डर देखे, पिच देखी, स्टेडियम देखा, फिर आप पूछें सब तो ठीक है पर टीम स्पिरिट कहाँ है।
हाँ, जाहिर है टीम स्पिरिट भी एक अलग चीज थोड़ी है जिसे आप उंगली रखकर दिखा सकें। वो तो खिलाड़ियों के खेलने के तरीके, उनके तालमेल, उनके जोश का नाम है।
बिल्कुल। रायल कहते हैं मन के साथ भी हमने यही गलती की है। मन कोई अलग चीज नहीं है जो शरीर के साथ टिकी हुई है। मन तो हमारे शरीर के खास तरीके से काम करने, सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने का नाम है। तो किताब हमें हमारी सोच की गलतियों को पहचानने में मदद करती है, हमारी भाषा को साफ करती है।
अच्छा, तो ये किताब हमें कोई नए वैज्ञानिक तथ्य नहीं बता रही, बल्कि पुराने तथ्यों को एक नए चश्मे से देखना सिखा रही है।
एकदम।
चलिए अब इसके कुछ खास अध्यायों और विचारों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पहला बड़ा हमला है डेकार्ट का मिथक पर।
हाँ, यही रायल मशीन में भूत वाली बात करते हैं और कैटेगरी मिस्टेक का वो क्लासिक उदाहरण देते हैं, यूनिवर्सिटी वाला।
हाँ, वो मैंने पढ़ा था।
कोई ऑक्सफोर्ड घूमने आता है, कॉलेज, लाइब्रेरी, लैब सब देखता है और फिर पूछता है, पर यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो ही नहीं समझ पाता कि यूनिवर्सिटी इन सब इमारतों और विभागों का संगठन है, उनका अरेंजमेंट है, कोई अलग चीज नहीं।
समझ गई। तो जैसे यूनिवर्सिटी कोई अलग बिल्डिंग नहीं, वैसे ही मन कोई अलग चीज नहीं जो शरीर में रहती है। ये तर्क तो काफी दमदार लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी के मन की बात करते हैं तो हम उसके अंदर किसी छिपी हुई चीज की बात नहीं कर रहे होते।
राइल के हिसाब से बिल्कुल नहीं, हम बात कर रहे होते हैं उस इंसान की क्षमताओं की, उसकी आदतों की, खास हालात में उसके व्यवहार करने के तरीकों की, उसकी प्रवृत्तियों की, मतलब डिस्पोजिशंस की। मन हमारे कामों में, हमारी बातों में, हमारी स्किल्स में जाहिर होता है, किसी अंदरूनी डिब्बे में नहीं छिपा होता।
ये बहुत दिलचस्प है। इससे जुड़ा एक और बड़ा आइडिया है अगले अध्याय में, कैसे जानना, नोइंग हाउ, और ये जानना, नोइंग दैट के बीच का फर्क, ये क्या है।
ये राइल के सबसे महत्वपूर्ण तर्कों में से एक है। हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि समझदारी या इंटेलिजेंस का मतलब है बहुत सारी जानकारी होना, तथ्य जानना, जिसे राइल कहते हैं ये जानना, नोइंग दैट।
जैसे ये जानना कि दिल्ली भारत की राजधानी है या E=MC². हाँ, आमतौर पर तो हम इंटेलिजेंस को इसी से जोड़ते हैं।
पर राइल कहते हैं कि एक और तरह का जानना है जो ज्यादा बुनियादी है, कैसे जानना, नोइंग हाउ, यानी कोई काम करना जानना, कोई हुनर होना।
जैसे साइकिल चलाना जानना,
बढ़िया चाय बनाना जानना, या मजाक करना जानना, ये सब स्किल्स हैं।
अच्छा, तो उनका कहना है कि ये कैसे जानना ज्यादा जरूरी है। पर क्यों?
क्योंकि रायल उस सोच पर हमला करते हैं जिसे वो बौद्धिकवादी किंवदंती कहते हैं, इंटेलेक्चुअलिस्ट लेजेंड। ये मानना कि हर समझदारी भरे काम से पहले मन में कोई ना कोई नियम या सिद्धांत सोचना जरूरी है। जैसे कि एक बढ़िया कॉमेडियन को पहले कॉमेडी के रूल सोचने पड़ते हैं, या एक कुशल बावर्ची को रेसिपी रटनी पड़ती है।
हाँ, ये तो जरूरी नहीं लगता। कई बार तो लोग बस कर लेते हैं बिना ज्यादा सोचे। मैंने खुद बाइक चलाना सीखा तो कोई नियम नहीं सोचे थे, बस करते करते आ गया।
बिल्कुल, रायल कहते हैं कि अगर हर काम के लिए पहले नियम सोचना जरूरी हो तो फिर उन नियमों को समझदारी से लागू करने के लिए भी नियम सोचने पड़ेंगे।
हाँ,
और फिर उन नियमों के लिए भी नियम, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, एक तरह का इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगा।
समझ गई। तो बुद्धिमानी असल में हमारे काम करने के तरीके में दिखती है, न कि काम करने से पहले हमारे मन में चलने वाले किसी गुप्त सोच में। यानी नोइंग हाउ ज्यादा मौलिक है। ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है।
एकदम। और इसी लॉजिक से राइल एक और बड़े कॉन्सेप्ट को चुनौती देते हैं, इच्छा शक्ति या द विल।
इच्छा शक्ति, द विल।
हाँ, हम अक्सर मानते हैं कि हम जो भी काम जानबूझकर करते हैं, वॉलंटरी एक्शंस, वो इसलिए करते हैं क्योंकि पहले हमारे मन में एक इच्छा या वोलिशन पैदा होती है। जैसे मैंने हाथ उठाने का फैसला किया, एक इच्छा हुई, फिर हाथ उठाया।
हाँ, ये तो कॉमन सेंस जैसा लगता है, पहले इरादा फिर काम।
पर राइल पूछते हैं, क्या किसी ने कभी इस इच्छा या वोलिशन को महसूस किया है? यह है क्या चीज? उनका कहना है कि ये भी एक काल्पनिक चीज है, एक फिक्शनल एंटिटी है जिसे हमने सिर्फ अपनी थ्योरी के मन शरीर को चलाता है को बचाने के लिए गढ़ लिया है।
तो
जब हम कहते हैं कि कोई काम जानबूझकर किया गया, तो हम किसी अंदरूनी धक्का लगने की बात नहीं कर रहे होते।
फिर हम क्या कह रहे होते हैं? जानबूझकर और अनजाने में किए गए काम में क्या फर्क है फिर?
राइल कहते हैं, फर्क उस काम के संदर्भ में है, कॉन्टेक्स्ट में है। क्या वो व्यक्ति ऐसा करने से बच सकता था? क्या उसे उस काम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता था? क्या वो होश में था? ये सब बातें उस काम और करने वाले की स्थिति के बारे में है, ना कि किसी रहस्यमयी अंदरूनी इच्छा के होने या ना होने के बारे में।
वाह, तो राइल एक एक करके हमारे जो मानसिक शब्द हैं उनकी परतें उधेड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि उनका असली मतलब हमारे व्यवहार और क्षमताओं से जुड़ा है, न कि किसी अंदरूनी भूत से।
बिल्कुल।
आगे के अध्यायों में भी वो यही करते हैं, भावनाओं, कल्पना वगैरह के साथ।
हाँ बिल्कुल, जैसे भावनाओं या इमोशंस को लीजिए, राइल कहते हैं गुस्सा, प्यार, डर, ये सिर्फ अंदरूनी एहसास या फीलिंग्स नहीं हैं, ये व्यवहार करने के जटिल तरीके हैं, मूड्स हैं और मकसद हैं।
खास तरीकों से बर्ताव करता है, शायद शेखी बगाड़ता है, दूसरों से बेहतर दिखने की कोशिश करता है वगैरह। ये एक व्यवहार का पैटर्न है, एक स्वभाव है।
ये स्वभाव या डिस्पोजिशन वाला आइडिया बहुत जरूरी लगता है इसमें। मतलब हमारे ज्यादातर मानसिक गुण हमारी आदतें या व्यवहार करने की प्रवृत्तियां हैं, परमानेंट स्टेट्स नहीं।
हाँ, काफी हद तक वो क्षणिक घटनाओं से ज्यादा स्थायी प्रवृत्तियों पर जोर देते हैं। इसी तरह आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज पर वो कहते हैं कि हम खुद को किसी जादुई अंदरूनी नजर, इंट्रोस्पेक्शन से नहीं जानते।
अच्छा।
हम खुद को वैसे ही जानते हैं जैसे दूसरों को जानते हैं, अपने कामों, बातों, आदतों को देखकर। हाँ, हमें अपनी कुछ अंदरूनी बातें पता होती हैं जो दूसरों को नहीं पता, पर वो कोई खास दिव्य ज्ञान या अचूक दृष्टि नहीं है। और कल्पना, इमेजिनेशन, जैसे मैं अपने बचपन के घर की कल्पना करूं, मन में तस्वीर देखूं।
रॉयल्स कहते हैं कि ये मन में कोई तस्वीर देखना नहीं है, ये ज्यादातर ढोंग करने या नकल करने जैसा है। आप मन ही मन उस घर को देखने का अभिनय कर रहे हैं बिना असल में देखे। ये भी एक स्किल है, एक कैसे जानना है।
अच्छा, और बुद्धि या सोचना भी सिर्फ मन में बातें करना नहीं है?
नहीं, सोचना भी, तर्क करना, समझना, अपनी बात कहना, इन सब सार्वजनिक पब्लिक स्किल्स पर आधारित है। इंटेलिजेंस हमारे प्रदर्शन में दिखती है, हमारे कामों में दिखती है। कोई अंदर ही अंदर बहुत बुद्धिमान हो पर कभी कुछ कहे या करे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा?
सही बात है। तो अगर हम इन सब विचारों को समेटें तो कुछ बड़े संदेश या थीम्स उभर कर आते हैं। पहला तो जाहिर है, कैटेगरी मिस्टेक। मन को शरीर जैसी चीज मानना ही सारी गड़बड़ की जड़ है।
दूसरा, वो यादगार रूपक, मशीन में भूत। ये दिखाता है कि मन और शरीर को अलग मानना कितना बेतुका है। मशीन को चलाने के लिए किसी भूत की जरूरत नहीं, मशीन का सलीके से इंटेलिजेंटली चलना ही उसका मन है।
तीसरा, जो भी आपने कहा, स्वभाव बनाम घटनाएं। ज्यादातर मानसिक बातें क्षणिक घटनाओं के बजाय हमारे व्यवहार करने के पैटर्न या आदतें हैं।
हाँ, जैसे भारत में हम कहते हैं उसका स्वभाव ही ऐसा है, ये राइल की बात से मिलता जुलता है। हम किसी के चरित्र को उसके लगातार किए जाने वाले कामों से ही आंकते हैं, है ना?
बिल्कुल।
चौथा, कैसे जानना बनाम ये जानना, नोइंग हाउ वर्सेज नोइंग दैट। प्रैक्टिकल स्किल, हुनर का महत्व। इंटेलिजेंस सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि काम करने की काबिलियत है। ये तो हमारे यहाँ हुनरमंद लोगों की कद्र से भी जुड़ता है, जो हाथ का काम जानता है या कोई कला जानता है।
हाँ, और पांचवा, सार्वजनिकता का महत्व, प्राइमेसी ऑफ द पब्लिक। हमारे सारे मानसिक कॉन्सेप्ट्स का मतलब हमें बाहरी दुनिया, लोगों के व्यवहार और आपसी बातचीत से ही मिलता है। प्यार, गुस्सा, समझदारी, इन शब्दों का मतलब हमने लोगों को देखकर और सुनकर ही सीखा है। किसी पूरी तरह से प्राइवेट मन का विचार ही बेमानी है।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां या विचार हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं, मतलब बहुत यादगार तरीके से रायल अपनी बात रखते हैं।
हाँ, जैसे शुरू में ही रायल का वो ऐलान, आधिकारिक सिद्धांत, मशीन में भूत का हठ धर्मिता पूरी तरह से गलत है। ये एक बड़ी गलती है, एक श्रेणीगत भूल। ये एकदम साफ कर देता है कि उनका इरादा क्या है, कोई लाग लपेट नहीं।
और एक और जो बताता है कि मन असल में है क्या, उनका पॉजिटिव व्यू क्या है। किसी व्यक्ति के मन की बात करना किसी ऐसे भंडार की बात करना नहीं है जिसमें ऐसी वस्तुएं रखी जाती हैं जिन्हें भौतिक दुनिया रखने से मना किया जाता है। यह व्यक्ति की क्षमताओं, देनदारियों और कुछ प्रकार की चीजें करने और गुजरने की प्रवृत्तियों की बात करना है।
मतलब मन कोई चीजों का गोदाम नहीं,
नहीं, बल्कि इंसान की काबिलियत और आदतों का जिक्र है, वो क्या कर सकता है और क्या करने की उसकी आदत है।
और तीसरा, वो कैसे जानना वाली बात, कि समझदारी भरे काम के लिए जरूरी नहीं कि पहले मन में नियम दोहराए जाएं, जैसे कुशल कारीगर बिना थ्योरी सोचे कमाल का काम कर देता है।
हाँ, या शतरंज का खिलाड़ी, वो हर चाल से पहले नियमों की लिस्ट नहीं पढ़ता। उसकी समझदारी उसकी चालों में है, उसके खेलने के तरीके में है, उसके दिमाग में चल रही किसी अलग फिल्म में नहीं।
इन विचारों का असर सिर्फ दर्शन तक ही सीमित नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और कई दूसरे फील्ड्स में भी इनका महत्व है ना?
हाँ, जैसे मनोविज्ञान और थेरेपी में। राइल की सोच उन तरीकों को बल देती है जो व्यवहार बदलने पर फोकस करते हैं, जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये मानते हैं कि सोच और व्यवहार के पैटर्न बदलकर मानसिक समस्याओं को ठीक किया जा सकता है, न कि सिर्फ किसी अंदरूनी कारण को खोजकर। फोकस व्यवहार पर है।
शिक्षा में भी आजकल सिर्फ जानकारी रटाने ये जानना के बजाय स्किल्स सिखाने कैसे जानना पर जोर दिया जा रहा है।
हाँ, प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल काम, ये सब राइल के विचारों से मिल खाते हैं। बच्चों को सिर्फ तथ्य नहीं, काम करना सिखाना जरूरी है, जानना कि कैसे करें।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बारे में सोचने का नजरिया भी बदलता है। क्या हम सच में मशीनों में एक मन या चेतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या हम सिर्फ ज्यादा जटिल कैसे जानने वाली मशीनें बना रहे हैं?
अच्छा सवाल है। राइल हमें सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि क्या AI को दुनिया के साथ इंटरैक्ट करके सीखना चाहिए जैसे बच्चे सीखते हैं, ना कि सिर्फ नियमों पर चलना। एम्बॉडीड इंटेलिजेंस का आइडिया।
और सोचिए कानून और नैतिकता में, किसी को जिम्मेदार ठहराने के लिए हम क्या देखते हैं? क्या उसने जानबूझकर किया? क्या वो हालात को समझता था? हम उसके बाहरी व्यवहार और क्षमताओं को देखते हैं, ना कि उसके मन के अंदर किसी इरादे को झांककर।
पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी ये सोच काम की हो सकती है। मतलब अगर खुद को बदलना है तो अपनी आदतों और कामों को बदलना होगा। सिर्फ अच्छा महसूस करने की कोशिश करने से शायद बात ना बने।
हाँ, जैसे राइल कहते हैं, अगर बहादुर बनना है तो बहादुरी वाले काम करने की प्रैक्टिस करनी होगी। करते करते वो स्वभाव बन जाएगा। हम वो हैं जो हम करते हैं।
बिल्कुल। तो इस गहरी पड़ताल से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे दिलचस्प बात क्या रही?
मेरे लिए शायद ये एहसास कि मन कोई रहस्यमयी पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। ये सोचना कि हमारी काबिलियत, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार ही हमारा मन है, ये काफी मतलब लिबरेटिंग है, आजादी देने वाला विचार है। और कैसे जानना वाली बात कि हुनर और समझदारी हमारे कामों में झलकती है, ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल और पावरफुल लगा।
मेरे लिए शायद ये कि हम दूसरों को कैसे समझते हैं। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा होगा। राइल हमें याद दिलाते हैं कि उनके कामों और व्यवहार के पैटर्न पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, ये देखकर अच्छा लगा कि कैसे भाषा को ध्यान से समझकर उसके विश्लेषण से एक सदियों पुरानी दार्शनिक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। ये फिलॉसफी का एक अलग ही अंदाज है।
तो कुल मिलाकर रॉयल की द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड हमें सिखाती है कि मन शरीर की समस्या शायद उतनी बड़ी समस्या है ही नहीं जितनी हमने बना दी है। ये भाषा के भ्रम से पैदा हुई है। बुद्धिमत्ता, भावनाएं, इच्छा, ये सब हमारे व्यवहार करने के तरीके हैं। हमारे अंदर छिपे कोई भूत नहीं।
और शायद सबसे बड़ी बात, हम वो हैं जो हम करते हैं। हमारा चरित्र, हमारी मान्यताएं, हमारी समझ, ये सब हमारी आदतों और कामों के पैटर्न में दिखाई देती हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।